میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ درود پاک کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا پیارا ارشاد ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کفن دفن کورس، اس کی اہمیت کے حوالے سے مدنی قافلے میں ایک ہونے والا واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کا خلاصہ کہ ہمارا ایک دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ، کافی عرصے پہلے کی بات ہے، کہیں سفر پر تھا تو ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں میت ہو گئی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا اگر آپ میں سے کوئی چلیں اور میت کو غسل وغیرہ دے دیں۔ اس لیے میں نے جب سنا تو ارے یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ساتھ دینا چاہیے، اور یہ جو دعوت اسلامی کا کام کرنا چاہتے ہیں، کام بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو کرنے والے کے لیے دل میں بڑی عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی اسلامی بھائی کسی کے والد کا غسل دے دے، کسی کے جوان بیٹے کو غسل دے، کسی کی والدہ کی تدفین میں شرکت کر لے، اور یہ جو معاملات دعوت اسلامی سکھاتی ہے اگر وہ سنت کے مطابق کرتا ہے تو اس اسلامی بھائی کی ان خاندان میں بڑی عزت ہو جاتی ہے، اس علاقے میں دین کے کام کو بہت ترقی ملتی ہے کہ جہاں پر ہمارے اسلامی بھائی اس شعبے کے کام کو اہمیت دیتے ہیں۔ خیر، اسلامی بھائی اس کے ساتھ گئے، گاؤں تھوڑا دور تھا، جب وہاں پہنچے تو بڑی حیران کن بات انہوں نے یہ بتائی کہ جو گھر کے افراد تھے وہ گھر کے باہر تھے اور میت گھر کے اندر تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں نے میت کو غسل کیوں نہیں دیا؟ کہا ہمیں تو نہیں آتا ہے، اور ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو میت کو غسل دے سکے، اور چونکہ وقت کافی گزر گیا تو میت پھول گئی اور اس میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی، اور گھر میں بیٹھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم گھر سے باہر آ گئے۔ اسلام بھائی نے جیسے تیسے اس بدبودار میت کو غسل دیا، اور جب ظاہر ہے یہ تو قافلے والے تھے، ان کے پاس کفن تھوڑی تھا، ان کو کہا کفن کہاں ہے تو کہا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کفن کس طرح دیتے ہیں۔ کفن پہنایا گیا، جیسے تیسے کپڑے کا انتظام کیا، کفن بنایا گیا، پہنایا گیا، اور جب یہ کہا گیا کہ بھائی آئیں نماز جنازہ پڑھ لیں، تو خاندان سمیت، اولاد سمیت، کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کو نماز جنازہ کا صحیح طریقہ آتا ہو۔ بہرحال بل مدنی قافلے والے اسی علاقہ گاؤں کی مسجد میں رہے، تو مسجد میں بھی ہوتا نا، ایسی کئی مسجدیں تو ہم نے بھی دیکھی جس میں تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کہاں گئے، امام صاحب چھوڑ کے چلے گئے۔ اب امام صاحب جو بیچارہ مسجد کو نماز پڑھاتا ہے تو اس کا بھی تو گھر بار ہے نا، جب اس کو بھی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوگا تو کیسے مسجد میں رہے گا۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے کوئی واقعات یہ بیسیوں ہیں، कि जिसमें अगर हम देखते हैं तो आज भी अगर शहर में भी देखा जाए तो यूं समझ लें कि कॉल सेंटर बना हुआ है हमारा, कि घर में किसी का इंतकाल होगा तो अब हमने तो फोन कर देना है भाई, इदारे वाले आएंगे, मैयत को ले जाएंगे, गुसल देकर जनाब हमें कफन में लपेट कर दे देंगे, क्योंकि शहर है। तो हमारे यहां भी इसी तरह होता है, बारहा हम भी गए जहां इस तरह के गुसल दिए जाते हैं और देखा है कि उस किस कैफियत में गुसल दिए जाते हैं। जब कोई इंसान दुनिया से जाता है, जाहिर है अचानक हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन बाज बीमारियों के सबब ऐसी कैफियत तारी होती है कि उस पर नजा का आलम नजर आता है, बीमारी इतनी बढ़ गई और ऐसी कैफियत होती है कि जिसमें लगता है कि अब ये दुनिया से जा रहे हैं, और इसको नजा की कैफियत कहा जाता है। नजा के लुगवी माना है खींचना, और इससे मुराद रूह का जिस्म से निकलना है, इसी को जान निकलना और मौत का आना भी कहते हैं। जब जांकनी की हालत में किसी को देखा जाए तो उसे तलकीन करना चाहिए, यानी कलिमा याद दिलाना चाहिए। अब कलिमा याद दिलाने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि उसे कहा जाए कि कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो, तो ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त अगर जैसी इसी कैफियत हो तो उसके सामने बुलंद आवाज से कलमा शरीफ का विर्द करें, जैसे ही उसकी जबान से कलमा शरीफ जारी हो जाए अब आप ठहर जाएं। अगर फिर से वो कोई बात करे तो उलमा फरमाते हैं कि फिर तलकीन करें, फिर कलमा शरीफ का विर्द करें, कि कलमा शरीफ अगर उसका आखिरी कलाम होगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में दाखिल होगा। कितनी बड़ी ये खैरखाई है। अमीर अलसुन्नत यही दुआ फरमाते ना है कि ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। हैं, ईमान पर मौत की तमन्ना, मुसलमान है अत्तार तेरी अता से हो ईमान पर खातिमा या इलाही, यानी यूं समझ लें कि अगर पता चले ना कि इस वक्त दुआ कबूल होगी तो अमीर अहले सुन्नत की दुआ यही होगी कि या अल्लाह मौत के वक्त ईमान सलामत रखना। ईमान के साथ जाना ये बड़ी कामयाबी है, और उलमा ने इस पर बहुत कलाम किया। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाही अलैह लोगों को दरस हदीस दिया करते थे और यही हदीस बयान करते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसका खातिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर होगा वो जन्नत में जाएगा। अब हमने सुना बेसाख्ता जबान से सुभान अल्लाह के नारे बुलंद होते हैं, हबीब अजमी रहमतुल्लाही अलैह इस हदीस को बयान करके रोया करते थे। तो किसी ने पूछा कि हजरत इतनी बिशारत वाली अब हदीस सुनाते हैं, ये हदीस सुनाने के बाद रोते क्यों हैं? आपने इरशाद फरमाया कि ये बात तो कतअन हक है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा, लेकिन मुझे इस बात की कौन गारंटी दे कि मेरा आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा? मैं तो इस बात से डरता हूं। तो गोया जब किसी का ऐसा मामला हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना ये बहुत बड़ी, समझो उसके साथ जो है वो खैर खाई है। तो ये हालत नजा में हमें करना है। अब अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो एक बड़ी बात जो अहम बात समझनी चाहिए कि उमूमन हाथ पैर सीधे नहीं किए जाते, ये पता भी नहीं होता है। और ऐसे मैयतों को भी देखा है बेचारे जिनके पैर मुड़े के मुड़े ही रह गए, क्योंकि जब इंतकाल होता है ना उसके बाद बदन सख्त होना शुरू हो जाता है, यानी हाथ कोई मतलब ऐसी कैफियत में तो ऐसी कैफियत में रह गया। तो जब भी अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो कहते यही है कि आंखें बंद कर दी जाएं और सर और ठोड़ी के दरमियान एक पट्टी बांध दी जाए ताकि मुंह खुला ना रहे। आप देखें बाज़ों का मैयत की आंखें खुली रह जाती हैं, बाज़ के मुंह खुले रह जाते हैं, और इसी तरह सीधे हाथ की तरफ उसका चेहरा घुमा दें तो ये किबले की तरफ रुख हो जाएगा उसका। वो जिस कैफियत में भी है उसका सीधी तरफ, यानी अगर वो लेटा हुआ है तो सीधी तरफ उसका चेहरा कर दें, उसकी आंखें बंद करें और उसके सर से लेकर थोड़ी पर एक पट्टी बांध दें, और इसी तरह दोनों पांव के अंगूठे इनके दरमियान भी एक डोरी जो है वो बांध दी जाए ताकि पांव सीधे रहे। अब गुसल का मामला होगा, गुसल के लिए भी जाहिर है आजकल हालात हमारे सामने हैं कि सगी औलाद भी इस काबिल ही नहीं होती कि गुसल दे सके, लिहाजा वो गुसल को ढूंढते फिरते रहते हैं, इदारों में फ़ोन कर लेते हैं। तो काश दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो जाएंगे, इस चीज़ को सीख लें और जब कभी मौका हो गुसल दें कि मैयत को नहलाना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। किसी एक ने ही काम कर दिया तो सब बरी उज़िमा हो गए, लेकिन अगर किसी ने भी ना किया तो सारे के सारे गुनाहगार होंगे जिनको पता चला। और फजीलत कैसी है सुनिए, सैयदना जाबिर रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी मैयत को गुसल दिया वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक और साफ हो जाएगा जैसा उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। कैसी जबरदस्त फजीलत। अब अगर दावत इस्लामी के माहौल में आए हैं, ये कोर्स इतना मुश्किल नहीं है, एक दो दफा इस्लामी के साथ प्रैक्टिकल में शामिल हो जाएंगे ये गुसल का तरीका आ जाएगा। तरीका सुन ले फिर भी कि जब भी गुसल देना हो तो ज़ाहिर मस्जिदों में आमतौर पर तख्ते होते हैं, तो मैयत को नहलाने के तख्त लाया जाए और उसको अगरबत्तियाँ या लोबान जलाकर गुसल के तख्ते को धुनी दें, ये खुशबू पहुँचाने के लिए अच्छा शगुन है। ये कोई गंदगी नज़र आ रही है, कोई ब्लड नज़र आ रहा है तो फिर उसको धोने का ज़ाहिर फिर तो ज़रूरत होगी, लेकिन बिला ज़रूरत धोने की हाजत नहीं है। गुसल जो दिया जाता है मैयत को, इसके सात स्टेप्स हैं, सात मराहिल हैं। पहला क्या है, इस्तंजा कराना, यानी इस्तंजा कराने वाला उल्टे हाथ में कपड़ा वगैरह अपने हाथ में लपेट ले। दूसरा वुजू कराना, इसमें कुल्ली और नाक में पानी डालना नहीं होता है बल्कि रुई, ये गुसल का जो सामान हम लेते हैं उसमें रुई का भी एक पैकेट होता है, कॉटन को थोड़ा सा घुमाकर छोटी छोटी बना ली जाए ताकि इसी कॉटन को गीला करके उसके दांतों की सफाई की जाएगी और इसी को छोटा छोटा बनाकर हम जो है उसके नाक में, यानी इतना छोटा हो कि नाक में जो वो आसानी से फेरी जा सके, गीला करके उसकी नाक में फेरेंगे ताकि ये नाक की सफाई हो जाएगी। फिर तीन बार चेहरा धोना है उसका, और चेहरा वही जो हम वुजू में धोते हैं, जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहाँ से थोड़ी से नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, ये तीन बार चेहरा उसका धुलाना है। दोनों हाथ कोहनियों समेत ये धुलाने हैं, एक बार पूरे सर का मसा, फिर तीन बार दोनों पाँव धुलाए हैं, ये इसका वुजू कराना है। ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है दाढ़ी और सर के बाल धोना, क्योंकि बास की दाढ़ी शरीफ घनी होती है तो उस घनी दाढ़ी को अच्छी तरह धोना, बाल सर के जो बाल हैं वो अलग से धोए जाएं ताकि पानी बहाना फिर बाद में आसान हो जाए। मैयत को उल्टी करवट, यानी ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो पहले उल्टी करवट, यानी अगर मैयत को लिटाया हुआ है तो उल्टी तरफ, यानी यहाँ से सीधी तरफ से इसको उठाकर करवट देंगे तो नीचे की जो कमर का हिस्सा है ये धोना आसान हो जाएगा। तो उल्टी करवट पे थोड़ा सा लिटाएंगे और इससे सीधी करवट धोएंगे, फिर इसको सीधी करवट पर लिटाकर उल्टी तरफ की कमर जो है इस पे पानी बहाया जाएगा। फिर इसी तरह पीठ से सहारा देकर थोड़ा बिठाने की कोशिश की जाएगी, यानी मुकम्मल नहीं बिठाया जाता है लेकिन थोड़ा सा पीछे से इसको उठाया जाएगा और पेट पर हाथ रखकर थोड़ा दबाएंगे ताकि अगर कोई मतलब इसमें मामला हो तो वो क्लियर हो जाए, थोड़ा सा हल्का सा दबाएंगे। लेकिन इन तमाम सूरतों में सितर पर नज़र ना पड़े, और सितर कहाँ तक होता है, मर्द का नाफ से लेकर दोनों घुटनों समेत कपड़ा नहीं हटना चाहिए। सातवां स्टेप ये है कि सर से पांव तक पानी बहाना। फिर मरहला आता है कफन पहनाने का, बाजार से बने बनाए कफन ये भी लिए जा सकते हैं, लेकिन जाहिर है जिस तरह हर इंसान का कपड़े का अपना अपना साइज होता है तो इसी तरह कफन का भी साइज होगा। बाद लोग अपने कफन को लेकर रख लेते हैं कि भाई मेरे दादा जान का कफन जो है वो जमजम शरीफ में भिगोया हुआ है, ठीक है अल्लाह मुबारक करे, लेकिन आप ये तो देखें कि उसका साइज क्या है। बाद अवकात कफन बाजार से जो खरीदे जाते हैं वो कफन साइज के मुताबिक नहीं होते, किसी के वालिद का इंतकाल हुआ, अब उनकी बॉडी काफ़ी हेवी है लेकिन कफन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का है। किसी का कद 6 फिट है लेकिन कफन जो है वो 5.5 फिट का है। तो लिहाजा बाज़ार से अगर कफन ख़रीदा जाता है तो पहले अपनी मैयत का साइज़ भी बताया जाए कि इस साइज़ का कद है, ताकि उसी हिसाब से कफन भी लिया जाए। और इसी तरह जब कफन जो होता है इसमें चीज़ें भी पूरी साइज़ की नहीं होती। कफन पहनाने की फजीलत भी सुन लीजिए, और ये माशाल्लाह इसमें काफ़ी इस्लाम में खैर ख्वाहियाँ भी करते हैं और मरने वाले के लिए कफन का इंतज़ाम भी कर देते हैं। बाज़ार ये चंद 100 रुपये खर्च होते हैं मगर सवाब कितना है। हज़रत सैयदना अबू उमामा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मैयत को कफनाया यानी कफन पहनाया तो अल्लाह पाक उसे सुंदुस का लिबास यानी जन्नत का इंतहाई नफीस रेशमी लिबास पहनाएगा। सबसे पहले तो कफन को वही धुनी देनी है जो लोबान और अगरबत्ती अपने जलाई है, फिर इस तरह बिछाएं कि सबसे पहले धज्जियाँ यानी जिससे कफन को बांधा जाता है ये बिछाई जाती हैं। ये बड़ा एक ऐसा टिप है कि जो आम तौर पर लोग नहीं करते, यानी कफन लपेट लिया अब वो ढूंढने के भाई लाओ भाई बांधने का। अब चलो रस्सी मिली भी गई तो कफन बॉडी इतनी वजनी है कि उसको उठाएंगे कैसे, उसके नीचे से रस्सी गुजरेगी कैसे। तो हमारे यहाँ तरीके में यही सिखाया जाता है कि पहले वो रस्सियाँ बिछा ली जाएँ, यानी जो पट्टियाँ होती है ना जो कफन को बांधते हैं ऊपर से, वो पहले बिछाई जाएँ। उसके बाद लिफाफा यानी बड़ी चादर जो कद से ऊपर बड़ी होती है उसको बिछाया जाएगा। अब इस पर मैयत को लिटाएं और कफनी पहनाएं। वो आज़ा जिन पर सजदा किया जाता है यानी पेशानी नाक हाथों घुटनों और कदमों पर काफूर लगाएं, सुभान अल्लाह। फिर तहबंद उल्टी जानिब से फिर सीधी जानिब से लपटें। फिर इसी तरह लिफाफा जो बड़ी चादर होती है जो कद से ऊपर है उसको भी पहले उल्टी तरफ और फिर सीधी तरफ लपेटें ताकि सीधा ऊपर रहे। अब ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से बांध दिए जाएं, और चूंकि चादर बड़ी होती है लिहाजा कफन को यानी मैयत को उठाने में भी इसका एक हिस्सा होना चाहिए ताकि मैयत को कब्र में उतारने में आसानी हो। अब ये जब जनाजा तैयार हो जाता है तो उस वक्त हो सके तो वहाँ पर यासीन शरीफ, सूरह बकरा शरीफ, ये इसकी तिलावत का इत्तेमाम, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मारूफ है कि इसको किया जाना चाहिए। तो अल्लाह पाक इस मामले पे भी हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह जब नमाज जनाजा का मामला आता है तो इसमें भी हमारी सुस्ती होती है, बल्कि कई जगहों पे देखा जाता है कि जब नमाज जनाजा का ऐलान होता है तो हमारे यहाँ जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो चले जाते हैं। तो जनाजा भी अदा किया जाए। उलमा ने लिखा है मोमिन को मरने के बाद जो सबसे पहला तोहफा मिलता है वो ये है कि उसके जनाजे के शुरका को बख्श दिया गया। तो जो मोमिन के जनाजों में शिरकत करना ये मगफिरत दिलाने वाला काम है। तो जब जब भी मौका मिले जनाजे में शिरकत करें, और इसी तरह जब जनाजे में शिरकत हो जाए तो फिर जनाजे को लेकर जो चलने वाला मामला है इसमें भी सुस्ती ना करें। मैं एक जगह था जनाजे में, सगे बेटे को वालिद साहब के जनाजे को कंधा देने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो पीछे लोगों ने रोक रखा था उसको, वो बेचारा जनाजा जो है वो कब्रिस्तान तक जो है पहुँचा दिया गया। तो बहरहाल सुन्नत ये है कि यके बाद दिगरे चारों पायों को कंधा दे, अपने सीधे कंधे पर जब आप डोली उठाएंगे ना तो मैयत का भी सीधा कंधा होगा। तो इस पर 10 कदम चलना है। लोग कलमा शहादत पढ़ते हैं, बेहतर है पढ़ लें, मतलब तफक्कुर करें, गौर करें, और मौत को याद करते करते कंधा दें 10 कदम, फिर 10 कदम फिर पीछे आ जाएं और सीधे पाँव पर अपना सीधा कंधा लेकर चलें 10 कदम, फिर घूमकर आगे आ जाएं, और मैयत के यानी अपने उल्टे कंधे पर जब आप डोली उठाएंगे तो मैयत का उल्टा कंधा होगा, यहाँ भी 10 कदम चलना है, और यही पीछे आकर जब उसके उल्टे पाँव पर 10 कदम चलेंगे तो ये 40 कदम होंगे। जो जनाजे को 40 कदम लेकर चले उसके 40 कबीरा गुना मिटा दिए जाएंगे। तो ये जनाजा हुआ। अब जनाजे को लेकर कब्रिस्तान पहुंचते हैं। कब्रिस्तान पहुंचकर भी चुके इल्म नहीं होता लिहाजा उसमें भी मैयत को बाजों का तकलीफ दे मराहिल दिए जाते हैं। सुन्नत ये है। कब्र कब्र जो है इसकी लंबाई चौड़ाई ये भी जैसे कफन का मामला है इसी तरह मैयत को कब्र में जहां उसको दफनाना है ये भी किसी की जिम्मेदारी हो। अब बारहा ये भी मंजर देखा है कि लहीम शहीम बॉडी होती है लेकिन चूंकि घर का किसी फर्द ने रब्ता ही नहीं किया वो कब्र छोटी सी बनी हुई है। यानी इतना कुछ मेरे को मंजर याद है कि बाप जिसने सारी जिंदगी कमा कमा कर बच्चों के लिए घर बनाए गाड़ियां बनाए कारोबार सजाए लेकिन बच्चों की गफलत की वजह से उसको कब्र भी सही नहीं मिली और दफनाने का जब मरल आया तो जैसे तैसे उसको बस कब्र में डाल दिया कि बस अब बहुत देर हो गई है। तो ये मरहला भी ऐसा होता है कि आमतौर पर इसमें बोलने जैसा भी नहीं होता, ऐसे अजीबोगरीब मामलात होते हैं। तो कब्र की लंबाई मैयत के कद से कुछ ज्यादा हो। अब जितना कद है 6 फिट है तो 6 फिट से ऊपर रखें। बाज़ औक़ात गोरकन कहते हैं हमें सब पता है। भाई हमें सब कैसे पता है, आपको मेरे वालिद साहब के कद कितना है आपको तो नहीं पता होगा ना। तो आप इस तरह कद से थोड़ी लंबी हो, इसी तरह चौड़ाई आधे कद की जितनी हो ये बेहतर है और गहराई कम से कम निस्फ कद की और बेहतर ये कि गहराई भी कद बराबर हो। लेकिन खैर इतनी नहीं खोदी जाती है। जनाजा कब्र के करीब किबला की जानिब रखी। ये देखिए बहुत अच्छा एक तरीका बयान किया जा रहा है कि जनाजे की जो डोली है ना ये बाजों का कदमों की तरफ रख दी जाती है, पीछे रख दी जाती है या इधर रख दी जाती है। इन सब सूरतों में मुश्किल होता है उतारना। तो मैयत के सीधी तरफ होगी किबला रुख की तरफ तो यहां से मैयत को उठाकर कब्र में उतारना आसान होता है। हस्बे जरूरत 2 या 3 और बेहतर यह है कि कवि यानी मजबूत और नेक आदमी कब्र में उतरे। औरत की मैयत महारिम उतारे यानी वो जिन पर औरत का निकाह हमेशा के लिए हराम था जैसे भाई बेटा बाप ये ना हो तो दीगर रिश्तेदार और ये भी ना हो तो परहेजगारों से उतरवाएं। औरत की मैयत को उतारने से लेकर तख्ते रखने तक ये किसी पर्दे वगैरह से ढक दिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। कब्र में उतारते वक्त ये दुआ पढ़नी है बिस्मिल्लाह वबिल्लाह वअला मिल्लत रसूलिल्लाह। ये दुआ है कब्र में उतारने की। कफन की जो बंदिश लगी हुई होती है 3 जगहों से, सर की तरफ भी बंधा हुआ होता है, पेट की तरफ भी बंधा होता है, नीचे कदमों की तरफ भी बंधा होता है, तो ये तीनों भी बंदिश खोल दें कि अब इनकी जरूरत नहीं है यानी बंधी भी रहने की और ना खोली गई तो हरज भी नहीं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अगर मैयत का मुंह देखने के लिए किबले की जानिब हुआ या नहीं, औरत का चेहरा खुलवाने की हाजत हो तो एहतियात मलूज़े खातिर रहे कि किसी नामहरम की नज़र चेहरे पर ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में हम ये देखते हैं कि दावत इस्लामी के माहौल में मैयत को जब उतारने का मामला आता है तो हमारे यारे कितने हाफिज हैं तो माशाल्लाह कब्र में पहले से ही जाकर यासीन शरीफ की तिलावत करते हैं, दुरूद ताज पढ़ते हैं। इसी तरह जो कब्र की सिले होती हैं तो उन पर भी यासीन शरीफ और दुरूद ताज वगैरह का दम करते हैं। इसी तरह हमारे इस्लाम में एक मामूल देखा है और ये खैरख्वाही करनी चाहिए जिन जिन से मुमकिन हो कि हमारे यहाँ चूँकि कराची में पक्की ईंटों की कब्र बनाई जाती है तो ज़ाहिर ये आग है तो इस पर लेप करना, ये उलमा ने लिखा है कि इस पर गारे का लेप कर दिया जाए। तो हमारे इस्लाम में पहले से चले जाते हैं ताकि गारा वगैरह का लेप कर दिया जाए। इसी तरह जो सिले हमारे यहाँ रखी जाती हैं वो भी ब्लॉक की होती हैं, वो भी आग से पकाई जाती हैं, इस पर भी देखा ये कि लेप वगैरह किया जाता है तो ये किया जाए ताकि इसमें बेहतरी है। सिले वगैरह रखी जाएंगी तो अब कब्र पर मिट्टी डाली जाती है और मिट्टी डालने के लिए हुक्म यही है कि जो कब्र की मिट्टी हो वही डाली जाए, इधर उधर से दीगर कब्रों की मिट्टी ना ली जाए। दोनों हाथों से 3-3 बार मिट्टी डालनी है। पहली मर्तबा जब डालेंगे तो पढ़ेंगे मिनहा खलकनाकुम, फिर दूसरी मर्तबा पढ़ेंगे व फीहा नुईदुकुम और तीसरी मर्तबा पढ़ेंगे व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये 3 मर्तबा पढ़कर और मिट्टी डाली जाए। जब हाथ झाड़ते हैं तो हाथ झाड़ने के लिए बाजों का तालियां बजाई जाती हैं। ये ताली ना बजे बल्कि ये जो हाथ झाड़ने का जो तरीका है ना, ये अंगूठे से अंगूठे को यूं मस करेंगे तो ये मिट्टी झाड़ जाती है। तो ये मिट्टी डाली जाए। फिर जो मिट्टी जमा की जाती है तो अगर कोई ऐसे मुबल्लिग हैं जो वहां पर नेकी की दावत का सिलसिला कर सकती है, क्योंकि उस वक्त गपशप हो रही होती है।
जी हाँ,
आप देखेंगे कि कब्र कब्रिस्तान जो हमारे लिए इबरत का मकाम है, जाहिर है कौन सो रहा है वहां पर? बड़े बड़े सेठ सो रहे हैं। कब्रिस्तान में कौन है? बड़े बड़े सेठ, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, बड़े बड़े घर थे, बहुत सी कारें थी, बहुत सारा बैंक बैलेंस था, मगर मरने के बाद सेठ साहब को क्या मिला? कुछ भी नहीं है। मरने के बाद क्या मिला सेठ साहब को? कुछ भी नहीं, बिल्कुल छोटी सी कब्र। यानी कितनी इबरत की बात होती है कि एक जगह सेठ की कब्र है जो अरबपति था, और दूसरी जगह एक लावारिस शख्स की कब्र है जिसके पास बाजार कुछ भी नहीं था। तो यहां तो महल्ला एक ही है, यहां रहने में महल्ला अलग रखते हैं कि ना ना गरीब आदमी के साथ नहीं रहेंगे भाई। हाँ, छोटा मोटा बंगला तो चाहिए नहीं हमको, तो 2000 गज का बंगला चाहिए। अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब फैजान नमाज में एक वाक्या लिखा है कि उसके पास जहाजों की कंपनियां थी, कई कई होटल थे, और जब इसका इंतकाल हुआ तो अरबों डॉलर उसके बैंक में थे मौजूद। यानी इतना कुछ, जिसके पास जहाज, पानी के जहाज की कंपनियां थी, जिसके दुनिया के कई शहरों में बड़े बड़े होटल थे, बंगले थे, सोने की मतलब उसके पास ठीक ठाक जखीरा मौजूद था, मगर सारा कुछ उसकी हिस्ट्री बयान करने के बाद नीचे उसकी कब्र की तस्वीर थी कि इतना बड़ा मालदार आदमी अब इस छोटे से घर में रहता है। हैं? एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। तो हमें भी इसी कब्र में आना है, यानी जिस कब्रिस्तान में हम खड़े हैं, इस मैयत को दफनाने के लिए आए हैं, इस कब्रिस्तान में बड़े बड़े कड़ियल जवान भी लेटे हुए हैं। जी हाँ, जिनका हुसन, जिनकी ताकत, जिनकी चर्म जबानी, जिनके हुसन व जमाल को देखकर हम सब फरिश्ता हो जाते थे कि यार कैसा हसीन है यार, कैसा इसका जिस्म है यार, कैसा इसका रंग है यार, इसके बाल कैसे सुनहरी, काश मेरे भी ऐसे बाल होते, इसकी आंखें कैसी चमक वाली हैं, काश ऐसी आंखें मेरी होती। लेकिन आज कब्र में वो किस हाल में है? तो बताया जाता है कि जब बंदा मरता है तो 3 दिन के बाद उसकी कब्र, उसकी लाश जो है ना, वो फट जाती है। जी हाँ, फट जाती है उसकी, और फिर उस मरने वाले की कब्र, उसके जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े क्या करते हैं? कीड़े इसके जिस्म को खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं, यहां तक कि उसके सारा सारा गोश्त, खाल, बाल सब खा जाते हैं, हड्डियां रह जाती हैं। फिर वो कीड़े उसकी हड्डियां खाना शुरू करते हैं, यहां तक कि उसकी हड्डियां भी खा जाते हैं। अब वो चुके भूखे होते हैं, किताबों में लिखा है, उलमा ने बयान किया कि फिर कीड़े आपस में एक दूसरे को खाते हैं, जो ताकतवर होता है कमजोर को खा जाता है, खाते 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 दो रह जाते हैं। अब वो दोनों लड़ाई करते हैं, जो ताकतवर होता है वो जो दूसरा होता है उसको भी मारकर उसको भी खा जाता है। अब वो एक रह जाता है, जब उसको कुछ नहीं मिलता तो वो भी बिलाखिर वहीं मर के मट्टी हो जाता है। ये इंसान की हकीकत है, ये इंसान जो इतना तकब्बुर करता है, इंसान की हकीकत क्या है? यही तो है। और जिसने अपनी मौत को याद कर लिया ना प्यारे इस्लाम में, उसकी सारी मस्तियां ना सब खत्म हो जाती है, सारी मस्तियां खत्म। यार हम नमाज नहीं पढ़ सकते, अरे सोच तो सही यार, तो जिस रात को सो रहा है क्या पता तू सुबह उठे ना उठ। मेरे ने फरमाया कि जनाजे में जाने वाले पल्लू चेहरे पर रखकर रोया करते थे कि नया आने वाला पहचान नहीं सकता था कि मैं ताजियत किससे करूं। भाई सुना तो है कि किसी जवान बच्चे का इंतकाल हुआ है, ये तो सारे रो रहे, मैं कैसे पहचानूं कि ये सगा बाप रो रहा है जिसका बेटा गया है, या तो सब ऐसे रो रहे जैसे उसका बेटा गया है, क्योंकि सब उस वक्त अपनी मौत को याद कर रहे होते हैं। लेकिन आज हम अपनी मौत को याद नहीं करते, कब्रिस्तान जाते भी हैं तो गपशप कर रहे हैं, माद अल्लाह कब्रों पर बैठ कर बातें कर रहे हैं, बल्कि जो मोबाइल हम बाहर यूज करते हैं वो कब्रिस्तान में यूज हो रहा होता है, जो फेसबुक के गंदे मनाजिर कब्रों पर बैठ बैठ कर देख रहे होते हैं, पान की पीके फेंक रहे होते हैं, एक दूसरे को अपने ऐसे किस्से कहानियां सुना रहे होते हैं, क्योंकि अंदर तो तदफीन हो रही ना, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے کنارے بیٹھ کر آپ رویا کرتے تھے، یہاں تک روتے روتے آپ کی داڑھی شریف بھیگ جاتی. پوچھنے والے پوچھتے کہ حضور آپ کے سامنے جہنم کا بیان ہوتا ہے، موت کا بیان ہوتا ہے، اب اتنا نہیں روتے لیکن قبر کا معاملہ دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہی تو آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، یہ معاملہ یہاں سدھر گیا نا تو آگے کے سارے مرحلے سدھر جائیں گے، لیکن ہم اس قبر کی تیاری نہیں کرتے. یہ جو قبر ہے نا، یاد رکھیے یہ قبر روزانہ پکارتی ہے، ہم اس قبر کو یاد نہیں کرتے، بلکہ کبھی ایسا بیان ہو تو آپ ڈراتے بہت ہو. ارے حدیثوں میں لکھا ہے قبر روزانہ پکارتی ہے کہ اے ابن آدم کیا تو مجھے بھول گیا، یاد رکھ میں اندھیرے کا گھر ہوں. جو کچھ بھی ہے اب یہ نہیں، یہی قبر ہے جو جنت کا باغ بھی بن جائے گی. کس اعمال کے سبب؟ نمازوں کے سبب، زکات دینے کے سبب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کے سبب، نیکیوں کے سبب، علم دین سیکھنے سکھانے کے سبب، ثواب جاریہ کے کام کرنے کے سبب. اور دعوت اسلامی یہ سارے ذریعے ہم کو دیتی ہے. آپ نے نماز سیکھی، اب نماز پڑھنے پھر کسی نے پوچھا کہ کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو کیا کرے، تو کہا جب جاؤ تو اس کو لیتے جانا بھائی، خالی دیکھتے ہی جاؤ گے کہ نماز نہیں پڑھتے. کوشش کیا کی آپ نے؟ ہمیں کوشش کرنی ہے. اور یاد رکھیے اگر کسی کو اپنی زندگی میں نمازی بنا دیا تو مرنے کے بعد جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا ہمیں بھی اس کی نمازوں کا ثواب ملتا رہے گا. قرآن سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے کہ ہم اور آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، جس کو قرآن سکھایا ہوگا جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا. دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں شامل ہو جائیے. خدام المساجد کتنا پیارا شعبہ ہے، مسجدیں بنائیے، قیامت تک مسجد رہے گی. جب تک اللہ کے گھر میں سجدے ہوتے رہیں گے آپ کو آپ کی قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا. تو یہ کام کریں نا. تو دعوت اسلامی کے الحمدللہ ماحول میں سکھایا جاتا ہے. تو یہ بیان ہو، اس طرح سے نیکی کی دعوت ہو، پھر ظاہر پھر فاتحہ کا سلسلہ ہوتا ہے. اور اس میں بہتر ہے کہ سرحانے الف لام میم سے مفلحون تک یہ تلاوت کی جائے، اور جو پائنتی کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کر پھر دعا کی جائے. اور یہ بڑا رقت بھرا ایک ماحول ہوتا ہے، بنایا جا سکتا ہے. اور پھر ایک خیر خواہی کی جائے، تلقین کی جائے، اس کا بھی طریقہ کار پورا لکھا ہے. اور تلقین کرنے کی فضیلتیں بھی ہیں. الحمدللہ اس وقت مردے کو یوں سمجھے کہ جیسے ہم جو سوالات ہو رہے ہیں اس کے جوابات سکھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی فضیلتیں علماء نے لکھی. پھر ماشاء اللہ الکریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایک اور خیر خواہی کی جاتی ہے کہ قبر پر اذان دی جاتی ہے، قبر پر اذان دی جاتی ہے. اور الحمدللہ اللہ پاک امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے کہ آپ ہم کو یہ سکھاتے ہیں کہ بھائی اب ایسے چھوڑ کے نہیں چلے آنا، نئے گھر میں منتقل کیا ہے نا ابو کو، نئے گھر میں منتقل کیا امی کو، اب ان کا گھر اس نئے گھر میں دل لگ جائے تو تھوڑی دیر رک جاؤ نا یار قبر پہ، ماں کے پاس، ابو کے پاس، یاسین شریف پڑھ لیں تھوڑا بیٹھ کے، تھوڑی تلاوت کا معمول کر لیں، تو کچھ دیر قرآن خوانی، کچھ دیر نعت خوانی، کچھ درود و سلام کا ورد، تاکہ نئے گھر میں دل لگ جائے. یہ کیسی بے بسی کا عالم ہوتا ہے، مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. جی ہاں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو کون غسل دے رہا ہے، کون جنازہ پڑھ رہا ہے، کون کندھا دے رہا ہے، کون قبر میں اتار رہا ہے، لیکن بے بسی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت بول نہیں سکتا ہے. آپ دیکھیں جب سلے رکھی جاتی تو اندھیرا ہوتا ہے، پہلی سل رکھیں گے تھوڑا اندھیرا ہوگا، دوسری سل رکھیں گے تھوڑا اور اندھیرا ہوگا، تیسری سل رکھیں گے 80% اندھیرا ہو جائے گا، اور جب چوتھی سل رکھتے ہیں تو خوب اندھیرا ہو جاتا ہے، خوب اندھیرا ہو جاتا ہے. بلکہ یہاں تک سوچیں غور، یعنی یہ تصور ہے نا پیارے اسلام بھائیو، یہ ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے کہ معمولی سا سوراخ بھی نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ معمولی سا سوراخ ہوتا ہے نا تو کسی کی آواز آتی ہے، ارے دیکھو دیکھو وہ سوراخ رہ گیا ہے، وہ معمولی سا سوراخ بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور قبر میں بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے. گھپ اندھیری قبر میں جب मुझे छोड़ कर चले सब घुप अंधेरी कब्र में जब मुझे छोड़ कर चले सब मेरी कब्र जगमगाना मेरी कब्र صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ رسالہ ہماری اس مجلس کفن دفن کی طرف سے شائع ہوا ہے کہ میت کے غسل کفن نیتیں فضیلتیں مسائل پر مشتمل یہ بڑا پیارا رسالہ ہے میت کے غسل و کفن کا طریقہ. اب یہ رسالہ اگر ہو ہمارے پاس ہم اس کو پڑھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں اور بھی سیکھتے رہیں اور مزید دیکھیں یہ دعوت اسلامی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہماری کتنی خیر خواہی دعوت اسلامی چاہتی ہے. ایک باقاعدہ اپلیکیشن بنائی ہے کفن دفن کی پوری اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے اور باقاعدہ اس میں اینیمیٹڈ جو ہے نا وہ آپ کو طریقہ سکھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ذہن بنائے کہ انشاءاللہ اگر ہمیں کہیں موقع ملا تو انشاءاللہ الکریم مسلمان کو کے غسل میں بھی شرکت کریں گے کفن بھی پہنائیں گے جنازے میں بھی شرکت کریں گے اور انشاءاللہ تدفین میں بھی شرکت کریں گے کریں گے انشاءاللہ اور پھر اس تحریک کو عام کریں اس تحریک کو عام کریں تاکہ ہمارے وہ لوگ کہ جو اس چیز سے دور ہیں اللہ کرے کہ ان سب چیزوں کو وہ بھی حاصل کریں اور اللہ کرے کہ ہم سب نیک اور ایک بن جائیں اور خوب خوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں.